నామశిష్టం మనుమపి సచీపుత్రమత్రస్వరూపం రూపం తస్యాగ్రజౌరిపురిం మాతరిం దృష్టవతీం రాధాకుండం గిరివర్మహోరాధికా మాధవాసాం ప్రాప్తో జస్య ప్రతితి కృపయా శ్రీగురుం తం నతోస్మి. వంశాకల్పతరుగస్య కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో మహాబదన్నాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విజే గురవే గౌరచంద్రాయ రాధికాయై తదాయ కృష్ణాయ కృష్ణ భక్తాయ తద్భక్తాయ నమో. యం ప్రవ్రజంతమనుపేతమపేతకృత్యం ద్వైపాయనో విరహ కాతరయామి పుత్రేతి తన్మయతయా తర్వోభినేదు తం సర్వభూతహృదయం. తవైవాస్మి న జీవామి త్వయా వినా ఇతి విజ్ఞాయ రాధే తం నయమామ చరణం. कृष्ण जन्माष्टमी परसों है, इसके उपलक्ष्य में हम लोग कृष्ण तत्व का विवेचन कर रहे हैं. विभिन्न वक्ताओं ने बड़े अच्छी तरह से कृष्ण तत्व के संबंध में अपने अपने विचार के अनुसार शास्त्रों से प्रमाण पुरस्कार अपने विचारों को प्राप्त किया. उसी की कड़ी में कुछ आज मैं भी कुछ बोल रहा हूं, संक्षेप में बतला रहा हूं. देखो भाई, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कहा, सूत जानासी भद्रम ते, हे भद्र सु तुम जानते हो भगवान श्वासतांग पति यदुवंशियों के पति रक्षक. श्वासतांग माने यदुवंश, शाश्वतांग पति देवक्यान वसुदेवस्य जातो, देवकी के घर में वसुदेव के द्वारा उन्होंने जन्म लिया. चिकित्सा असुरों का दलन और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए उनके विषय में आप वर्णन कीजिए. इसलिए श्रीमद् भागवत के अनुसार तो यही मालूम होता है देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में वो जन्मे. और फिर कहते हैं कस्मात मुकुंदो भगवान, किस लिए भगवान मुकुंद पितुर गृहात ब्रजगत, अपने पिता के घर से ब्रज में गए. तो पितु का घर कौन है, पिता का घर कौन है जो वहां से ब्रज में गए, वसुदेव देवकी का, अपने पिता के घर से ब्रज में गए. नहीं, पेतुर गेहात पिताजी के घर में जो थे वहां से मथुरा से ब्रजम गतः ब्रज को गए. और को बास ज्ञातवी, और कितने दिन अपने ज्ञातियों के साथ में रहे. स्वजन तो रहे वसुदेव देवकी इत्यादि, और ज्ञाति हुए उनके मित्र नंद जी, तो उनके यहाँ रहे. कृतवान शाश्वतांग पति, वही जदकुल के रक्षक जो हैं भगवान श्री कृष्ण। कौन कौन सी लीलाएं की फिर कहते हैं, जिस समय जन्म होने को है उस समय कहते हैं वसुदेव गृह साक्षात, वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषा पर, पुरुषा पर पर पुरुष भगवान वसुदेव के गृह में साक्षात रूप से आविर्भूत हुए। वहां पर भी आविर्भूत हुए वासुदेव कलानंत, यहाँ पर वासुदेव कौन है, वसुदेव से उत्पन्न, उनके कलानंत शास्त्र पदन जो है स्वराट, उन्होंने वहां पर जन्म लिया। अश्या सप्तमाष्टमो आकाशवाणी हुई, जिसको बहन कर ले जा रहा है दुष्ट, अपनी तुम्हारी बहन को ले जा रहा है, इसके अष्टम गर्भ ही तुम्हारा हंतारक होगा। तो जिसने मारा वो कौन है, अष्टम गर्भ वाले कृष्ण ही है, तो किसके गर्भ से बात है, ये भी शास्त्र यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, देवकी के ही पुत्र हैं, वसुदेव के पुत्र हैं। देवक्यांग देवरूपिण्य, देवरूपिणी जो देवकी हैं, विष्णु सर्वगुहाशय, विष्णु सर्वगुहाशय आविर्वाद आविराशीद यथा प्राच्यादिशन, जिस प्रकार से पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है उनके गर्भ से सूर्य से उदित हुए। विशेष करके जब कृष्ण देवकी जी के गर्भ में आए जेल खाना में, तो ब्रह्मा इत्यादि जितने देवता थे वहां उपस्थित होकर के गर्भ स्तुति कर रहे हैं, सत्यम त्रिसत्यम इत्यादि, सत्यस्य योनि निहितं च सत्य सत्याभिधातु इत्यादि। तो गर्भ स्तुति कहाँ हुई, ब्रज में तो हुई नहीं, इसलिए इस प्रमाणों से ये पता चलता है श्रीमद्भागवत कार व्यास जी या सुखदेव गोस्वामी का कुछ विशेष मतलब है। शास्त्रों में कहा गया नंदस्तु पुत्र आत्मन्ने राधा जातो महामन, नंदस्तु हमारे गोस्वामियों ने इसका वर्णन किया कि कृष्ण का जन्म देव वसुदेव जसोदा जी के गर्भ में हुआ और वहां पर सब आनंद इत्यादि बधाई बजी और जन्म महोत्सव माना गया, गाय दान इत्यादि। और भी हाँ उसमें भी बतलाया गया, पशुपांग जाय भी बतलाया, जाय मैंने जन्म बतला रहे हैं। इस तरह से वो माया देवी के जोग माया के संबंध में बतला गया कि तुम उनकी बहन, कृष्ण की बहन बतला है। तो यहाँ पर तनुजा के रूप में माया माई नहीं हुई, तो वो तो ब्रज में हुई, इसलिए इन प्रमाणों से ऐसा भी पता लगता है हरिवंश के प्रमाणों से भी जसोदा के गर्भ से निकले। तो अब यहाँ पर कुछ सामंजस्य कर रहे, क्यों प्रकट रूप में तो बतलाया देवकी का गर्भ में मथुरा में जन्म, और गूढ़ रूप में कुछ छिपा कर बोलते हैं कि ये जसोदा के पुत्र हैं, गोकुल में जन्म हुआ। तो इसका क्या तात्पर्य है, और यू कैन ट्रांसलेट हैं आफ्टर दैट। तब दशम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक दो तीन श्लोकों में बतलाया गया जदोस्तु धर्मशीलस्य नितरां मुनि सप्तम तंत्रांशे अंशेन अवतीर्णस्य विष्णु बीजानि संशम, जदश्च धर्मशील, धर्मशील और इस तरह से मुनि सप्तम जदो के वंश में कृष्ण उत्पन्न हुए। तत्रा अंशेन अवतीर्ण से अंश रूप में तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी गोस्वामी इत्यादि जी ने वो बतलाया कि न अंशेन पूर्णेन, पूर्ण रूप से इसकी व्याख्या सब की है, किंतु मुझे एक चीज यह स्मरण आया कि ठीक शाब्दिक अर्थ के अनुसार में धरा जाए तो ठीक लगता है, कुछ माने में क्या लगता है, तत्र अंशेन अवतीर्णस्य, तत्र कहाँ मथुरा में ये अंशेन, किसके अंशेन, नंदनंदन अंशेन, नंदनंदन जो गोकुल में जन्मे हैं उनके अंश से अवतीर्ण जो विष्णु है उनके बीरजानी लीला कथाओं का अवर्णन है। यद्यपि हमारे गोस्वामी ने वहां पर अंशेन का माने पूर्ण अर्थ किया है, पूर्ण रूप से जिसके कृष्ण के अंश हैं कौन, बलदेव उनके वैभव प्रकाश हैं, तो अंशेन सह कृष्ण ऐसा अर्थ किया। आया समझ में, ठीक समझ में आया कि नहीं आया। वहां पर अंशेन का अर्थ विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर या उन लोगों ने कहा अंशेन सह अवतीर्ण, बलदेव के साथ में अवतीर्ण हुए, समंजस किया। किंतु हम अब दूसरा एक अर्थ सनातन गोस्वामी की कृपा से मैं यहां पर बतला रहा हूं। अंशेन तत्र वहां मथुरा में, यहां ब्रज में नहीं, वहां तत्र अंशेन नंदनंदन के अंश के रूप में जो वैभव प्रकाश हैं यहां पर हुए उत्पन्न प्रकट, यहां अंश और सर्वांश रूप में कहां प्रकट हुए, ब्रज में गोकुल में अवतीर्ण हुए, उनकी कथाओं को किस लिए इतना कुछ छिपाया है, कुछ और बातें कही है, इसका कारण क्या है। स्पष्ट रूप में देवकी को कह रहे हैं और फिर छिपा करके कह रहे हैं कि जरा घुमा फुरा करके अर्थ करने से तब वहां गोकुल में जन्म दिखलाते हैं, क्यों, इसका कारण क्या है। इसका कारण है यद्यपि स्वरूपता ट्रांसेंडेंटल कृष्ण ही सबके प्रियतम है, मोस्ट बिलवेड सब प्राणी मात्र के, किंतु इस जगत में या परजगत में उपपति भाव की श्रेष्ठता संपादन करना है और उस रस को आस्वादन करना कृष्ण का ये ध्येय है। फिर से समझो, कृष्ण का अवतार का मूल उद्देश्य क्या है, धर्म प्रतिष्ठा इत्यादि सब गौण है, रस का आस्वादन करना, अखिल रसाम सिंह। तो जब तक कि औपपति शुद्ध भाव नहीं आएगा तब रस का आस्वादन नहीं होगा पूर्ण रूप से, इसलिए औपपति भाव की जरूरत है। यदि कृष्ण का ब्रज में जन्म होता गोकुल में उपपति भाव नहीं होता, क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता, वहां पर जो कन्याएं हैं उनकी बहन है और जो जेठ, जो उनके जेठ भाई की माताएं हैं वो क्या हैं, या उनकी पत्नियां, वो तो मां के समान बराबर है, तो वहां पर उपपति भाव यदि जन्मे हैं तो उपपति भाव कैसे होगा, रसाभास हो जाएगा। इसलिए मथुरा का जन्म ऊपर से मान लेने से ये समस्या हल हो जाएगी। बतलाया था संक्षेप में, बतलाया था इतना नहीं बतलाया। इसलिए औपपति भाव की सिद्धि के लिए कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, यही अच्छा प्रतीत होता है। तब वहां संभोग में और विप्रलंब दोनों अवस्था में उपपत्ति भाव रहेगा। इसलिए कृष्ण जब तक ब्रज में रहे, विवाह नहीं हुआ, उपनयन नहीं हुआ, उसके बाद तो विवाह होगा, तो उपनयन के पहले ही चले आए। यदि रहते तो उपनयन होता तो नंद बाबा उनकी शादी कर देते कहीं, और उपपत्य भाव सब समाप्त हो जाता, नहीं होता। इसलिए बड़ी चतुराई से कृष्ण ने जोग माया के द्वारा औपपति भाव का स्वादन करने के लिए ऐसा। देखो, ब्रज में यदि शादी हो जाती तो फिर औपपति भाव नहीं रहता, किंतु वहां पर देखो संजोग में उपपति भाव पतियों से छिप करके, और उनके पति वहां हैं। अब विप्रलंब में भी जब तक वो द्वारका मथुरा में रहे, गोपियां का उनके प्रति विप्रलंब का भाव रहा, कृष्ण का भी उनके प्रति अपने में उपपति का भाव रहा। ये बड़ा रहस्य है, इस रहस्य को जो समझेंगे वो रस का स्वादन करेंगे। इसलिए आप यू कैन ट्रांसलेट इन इंग्लिश, डोंट मेक एनी मिस्टेक। दोनों का बतला है ना, कृष्ण का वहां रहते हुए विप्रलंब भाव, इनका उनका, किंतु गोपियों का विप्रलंब भाव अधिक है।
So, in the coming next 2 days, we will celebrate the festival of Sri Janmashtami. So, from the last many days, we are hearing from the mouths of many, many devotees, according to their abilities, according to their conception, different understandings of what is Sri Krishna Tattva. So, Guru Maharaj said, today is his turn. So, on Srimad Bhagavatam, first skanda, first chapter, there the rishis of Namasaranya asked the question to Suta Goswami, hey Bhadra, hey Suta Goswami, so Krishna is the Saswatam, that means he is the protector of the Yadus, he is the son of Vasudev Maharaj.
No, Vasudev Maharaj. What is the difference between Vasudev and Vasudev?
Vasudev is Krishna's father and Vasudev is Krishna.
नहीं,
कृष्ण,
अच्छा बोलो, व्हाट यू टोल्ड, बोलो व्हाट,
बॉस, वासुदेव,
हु
इज वासुदेव, इज कृष्णस फादर, हां, एंड वासुदेव इज कृष्ण,
हां,
सो प्लीज डिस्क्राइब हिज पास्ट टाइम्स। So, therefore, Guru Maharaj is giving many different evidences directly from the Srimad Bhagavatam, how the conclusion is given that Krishna is the son of Vasudeva Maharaj and Devaki. There it says directly, Krishna went from his father's house. Where is that? In Mathura.
So, वो उधर लाल है, इधर लाल है। यहाँ से हम बैठेंगे, वहाँ से लाल दिखाई देगा। उसको भी लाल ऐसा कर देते हैं, और इसको भी भेज करके उधर भेज। वहाँ से सभी लाल सामने हैं, सब लोग टोली पर बैठेंगे। समझ रहे हैं? अथवा उनका दृष्टिकोण समझ लेना अच्छा हो तो रहने दें।
Giving different evidences directly from the mouth of Srila Vyasadeva in the Srimad Bhagavatam, how Krishna Parabrahma took birth in Mathura, and he took birth directly in the house of Vasudeva Maharaj. Oh, Bhadra, oh, Srila Goswami, what did he perform?
आपकी कृपा से चलना बंद
बैठ सकेंगे या चेयर दे दूं? बैठ सकेंगे?
Therefore, Devarupani, just like the sun appears from the ocean in the same way, Parabrahma Sri Krishna appeared from the womb like ocean-like womb of Devaki Mother. Also, another evidence given, when Vasudev Nandan Krishna appeared here in Mathura, that time all the demigods headed by Brahmaji offered many types of prayers. So where did they offer those prayers? Directly here in Mathura. So Sri Vasudev Maharaj and Sri Sukadeva Goswami had a special reason for giving all these pramans how Krishna was born in Mathura. But if you look very carefully under the direction of the Acharyas, also other meanings are given how Krishna took birth in
Vrindavan.
Better
use when you speak longer, not so fast. Like express.
Not like Radha.
Nandastu Atma Yojana. They are given directly praman in a hidden way how Krishna took birth from Yasoda. Also, that time it describes fully the Nandots of celebration of Nanda Maharaj, how on the birth of his son, Sri Nanda Baba became so happy, he gives so many cows in charity. Also, the gopis have said, Jayanti Te Dikam Janmana Braja, Krishna has taken birth in Vrindavan. They're given evidence. Brahmaji also said, so if you look very carefully, that in the Srimad Bhagavatam both things are described, both how Krishna took birth, appeared here in Mathura, and how Krishna also took birth in Vrindavan. So therefore, Guru Maharaj is saying, therefore, especially this verse, Tatra Angsena Avitirnasya. The two meanings have been given here. One is by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Guru Maharaj says, and the second is given by the inspiration of Sri Sanatana Goswami Pad. So, Tatra Angsena. So, that Angs of Krishna took birth with Krishna. That Angs can mean Baladeva Prabhu, who is the Vaibhava Prakash of Krishna himself. But also, if you think also in another way, Tat Angsena. The answer of Brajendra Nandan, he took birth where? In Mathura. So, therefore, question may come that why these both things have been described in the Bhagavatam, why everything has been described in a very hidden way? What is the reason? So, Krishna is the most beloved of all the jivas, not simply in this world, but also in the spiritual world also. Out of all different types of service to Krishna, Upapati Bhav, or the relation, unwedded relation with Krishna, is the topmost. So Sri Krishna came here, why? A secondary reason is to establish Dharma, Yada Yada Hi Dharmasya. But the main reason that Krishna came was to taste this Upapati Bhav with the gopis. So, if it's directly said in the Bhagavatam that Krishna is born in Gokul, then there can be no Upapati Bhav. Why? Because that means that all the gopis, the young unmarried maidens of Vrindavan, they will become like Krishna's own sisters in Gokul. That means they will be like Krishna's own sisters. Therefore, this will be disturbance, corruption of Upapati Bhav. Therefore, this Upapati Bhav is tasted both in meeting and in separation. So therefore, for all these reasons, Krishna left Vrindavan before his Upanayan, means his Brahman, his Diksha. Why? Because immediately after Diksha, the marriage must be arranged. So if Krishna is married in Vrindavan, then Upapati Bhav between Krishna and the gopis will be destroyed. So for this reason, Yogamaya arranged all these pastimes that Krishna would leave Vrindavan and take his Upanayan Samskar in Mathura and marry with all the Kanyas in, all the queens of Dwarka. So therefore, for this reason, Krishna's birth is not directly described in Vrindavan, and his marriage is also not performed in Vrindavan.
At last, I not understand.
So another point, Buddha told Vishnu Anuja means Jagmaya Devi. She took part in Gokul, not in Mathura. So it seems that Krishna took part in Gokul. Another point, Buddha told, if you externally admit that Krishna took part in Mathura, then this paramour mood will be solved very easily. Have to admit that externally he took part in Mathura. I have to mention this point too.
कृष्ण ने जन्मलीला का कुछ भाग मथुरा में संपन्न किया, शंख पद चक्र गदा पद्म धारण करके यहां पर उत्पन्न हुए, पूर्ण रूप से उसी समय में गोकुल में जन्मे यशोदा जी के गर्भ से। और जन्म लीला के बाद ही में नंद बाबा के घर में बधाई बजने लगी, बड़े उत्सव होने लगे, लाखों लाखों गैयाओं को दान किया जाने लग गया और उनका संस्कार, जन्म संस्कार जो होता है वहां पर गोकुल में। यहाँ पर कोई जन्म संस्कार नहीं हुआ, नाड़ी छेदन इत्यादि मथुरा में नहीं हुई, और वहां पर नरलीलावत उनका नाड़ी छेदन इत्यादि सब कार्य ये गोकुल में हुआ। यदि यशोदा के गर्भ से उत्पन्न नहीं होते तो यशोदा जी के साथ वहां नाड़ी छेदन का कोई प्रश्न ही नहीं आता, इसलिए नाड़ी छेदन भी वहां पकड़े। तो ये जन्मलीला हुई और कुछ दिनों को बाद ही कंस को शक हुआ कि यही नंदकानंदन ही, श्याम सुंदर ही हमारे प्राणों का हम तारक है, किंतु निश्चित नहीं कर सका ठीक। किंतु ब्रज में जन्मे हुए 10 दिन के अंदर में जितने लड़के थे उन सबका विनाश करने के लिए अपने असुर बंधुओं को परामर्श दिया, और सबसे पहले पूतना बालघातिनी रुद्राक्षसी वो ब्रज में आई और पुत्र लालन के बहाने पलने से गोदी में उठा लिया और कृष्ण को अपना 20 का स्तन दिया। कृष्ण ने 20 के साथ ही साथ आंखें बंद करके उसके प्राणों को भी खींच लिया और वो विकराल रूप धारण करके 6 माइल में गिर पड़ी, मथुरा में नहीं आ सकी। इस प्रकार से उसका प्राणांत हुआ और उसके गंध से जब उसको जलाया तो अगरु का गंध निकलने लग गया और कृष्ण ने दयालुता के साथ में उसको धात्री उचित गति दी। धात्री उचित माता का के जैसा जो स्तन पलाती है उसको धात्री कहते हैं, ऐसी गति उन्होंने दी। इसके बाद में कृष्ण ने और भी लीलाएं गोकुल में की, वहीं पर शकट भंजन लीला, त्रिनावर्त वध, शकट जो खड़ा था बहुत बड़ा भारी गाड़ी 6 पहियों वाला, उसी के अंदर में प्रवेश कर गया और नीचे उसी के पल्ले में कृष्ण झूल रहे थे, इतने जोर से दबाया कि कृष्ण को पिचट देगा, किंतु कृष्ण रोते हुए अपने पैरों को इस प्रकार से जो उछाल रहे थे उसके लगने से ही बस वो गाड़ी उलट गई और वो असुर मर गया। तृणावत और तृणावत का वध किया। असुर ने सोचा शरीर धारण करने से तो लक्ष्य को देख करके मार डालेगा, इसलिए हवा का रूप धारण करके भयंकर आंधी का रूप धारण करके उसे मारेंगे। किंतु वो कृष्ण को लेकर के ऊपर आकाश में उड़ा, कृष्ण ने उसकी ये पकड़ ली और थोड़ा सा बचने के लिए दबाया तो प्राण निकल गया, तो वो क्या करें उसके ऊपर में गिर गए और गोपियां फिर पीछे से पहुंच। इन सब लीलाओं में ऐश्वर्य भी है। तुम माधुर्य इसलिए कहते हैं अपने छोटे बालक रूप में ही उनका वध किया, विकराल विष्णु जैसा या त्रिविक्रम जैसा विराट रूप धारण नहीं किया, नर लीला के अनुरूप में किया, इसलिए इसको माधुर्य लीला ही कहते हैं। फिर कृष्ण को जम्भाई आई और यशोदा जी ने उसमें विश्व रूप देखा, अपने को भी उसमें बैठा देखा उनके मुख में, सोची जी भूत प्रेत लग गया। ब्राह्मणों को बुलाया, गाय दान की गोबर और मूत्र से उनका अभिषेक कराया। यशोदा जी को अर्जुन की भांति और दूसरों की भांति ऐश्वर्य भाव नहीं आया, भगवत बुद्धि नहीं हुई, ये सब लीलाएं उन्होंने की। क्या है इसके बाद में कृष्ण ने ब्रह्मांड घाट में मट्टी खाई, बलदेव इत्यादि शाखाओं ने उलाना दिया यशोदा मैया को और हाथ से उसका मुख खोल करके देखा तो देखा जो मट्टी तो नहीं देखा किंतु विश्व ब्रह्मांड को सब को उसी के अंदर में देखा। तभी तो उनको ये नहीं हुआ जे ये भगवान है। यशोदा जी का वात्सल्य इस प्रकार से गोकुल में दामबंधन की लीला हुई, भक्त वात्सल्य की डोरी में बंध गए, कृपया शीतस्व बंधन। इसके पहले आज तक किसी ने भी कृष्ण को नहीं बांधा, भाई ये चलेगा तब तक के कीर्तन करो कृष्णदास। ओ यो 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 माइक ही नहीं है तो देता किसी है। इसके बाद में जमलार्जुन का उद्धार हुआ, इसके बाद में छठी करा वृंदावन आए, वहां पर सबसे पहले बत्सासुर का बछड़ा बन करके आया था, उसको वध किया, अघासुर का वध किया, अघासुर ने पाप की प्रतिमुक्ति उसका वध किया, इसके बाद में ब्रह्मा जी ने बच्चों को और बालकों को दोनों को चुरा लिया, और इसके बाद में जब उनका वो छोड़ गया मोर लीला जब देखी तो बड़े विस्मित हुए और स्तुति करने लगे। भागवत में स्तुति बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया। इसके बाद में धेनुकासुर को वध किया, धेनुका माने मूर्खता, जो भगवान का भजन नहीं करते, अपने भोग विलास में मत रहते हैं, ऐसे लोगों को गधा कहा, बुद्धिहीन, उसको बलदेव जी ने वध किया। कालिया दमन, वृंदावन में काली हृदय को वो विशाला कर रहा था, उसके मारे सभी लोग मर रहे थे। कृष्ण ने उसका दमन किया और उसको रमणी द्वीप भेजा, दामन नल का पान किया उसी रात में, फिर मुंजाटवी में दामन नल का पान किया। वेणु गीत हुई, चीरहरण लीला हुई। भगवान ने चीरहरण की लीला क्यों की? बहुत बहुत से आजकल के आधुनिक विद्वानों को यह समझ में नहीं आता, जो अंतर और बाहर है उनके लिए छिपा क्या है। द्रौपदी के वसन बन करके लिपट गए तो उसमें कोई हानि नहीं हुई, और चीरहरण हुआ तो इसमें दोष देखते हैं। यज्ञ पत्नियों के ऊपर में अनुग्रह किया, इंद्र का मान मर्दन किया, और फिर उन लोगों ने मिलकर के गोविंद का अभिषेक किया। गोविंद नाम से नंद का वरुण लोक के दूतों ने अपहरण कर लिया। वे रात में ही स्नान कर रहे थे यमुना में, और फिर वहां पर देखा जब वरुण लोक में गए तो कृष्ण का सभी लोग पूजा और अभिषेक कर रहे हैं। नंद बाबा देखा जी हमारे बेटे को इतना आदर कर रहे हैं, तो फिर वहां से आए तो कुछ दिनों के लिए उनको ये हुआ कि हमारा बेटा जम लोग वहां पर गए और उसको देवता लोग इतना आदर कर रहे हैं। इसके बाद में रास पंचाध्याय रास हुआ, अजगर के मुख से नंद बाबा का छुटकारा दिया ये मथुरा में ही। अजगर उनके पैर को पकड़ लिया और निगलने लगा, और सभी लोग कृष्ण को पुकारने लगे, तो कृष्ण ने उसको पैरों से छू दिया और वो देवता बनकर विद्याधर दैत्य देवता बन गया और कृष्ण की स्तुति करके चला गया। इतना देखने पर भी कृष्ण का स्तर जो उनको कोई ब्रजवासी भगवान नहीं मानता। इसके बाद में शंखचूड का वध किया कृष्ण ने, फिर जुगल गीत हुई, अरिष्टासुर का वध हुआ, केशी वध, व्योमासुर वध, अक्रूर का फिर नंदगांव में आना और कृष्ण को ले जाना, और वहां पर ले गए। पहले रास्ते में रग वो जो कपड़ा रंजक होता है वो भी उसका वध किया, वो कंस को देगा कृष्ण को नहीं देगा, वध किया। इसके बाद मालाकार ने माला दिया तो उसके ऊपर मैं दया किया, कुब्जा के ऊपर मैं अनुग्रह किया, उसके अंग को परम सुंदरी बना करके और उसकी इच्छा को पूर्ण किया। इसके बाद में यही कंस टिल्ले में धनुष को भंग तोड़ दिया और कुबल्यापीड़ हाथी को सबके सामने मारा और उसके दांतों को लेकर के अखाड़ा में पहुंचे। यहीं पर चारुण को मुष्टि को मारा, इसके बाद में कंस के मंच पर कूद करके पकड़ करके उसका केस और नीचे गिरा दे, तुम मेरी मैया का केस पकड़ करके मारेगा, बस उसके ऊपर में गिरे और वो वैसे ही मर गया। अपने राज्य नहीं लिया, उग्रसेन को ही कंस के पिता को ही राज्य दे दिया, राज्याभिषेक कर दिया। और विद्या अध्ययन के लिए कहाँ चले गए? उज्जैन चले गए। उज्जैन क्यों गए? ऐसा कोई पंडित नहीं था, और वैष्णव पंडित होगा तो उनको जान जाएगा। इसके बाद गुरु दक्षिणा में उसके जो पुत्र की मृत्यु हो गई थी उसको ले आए जमपुरी से और गुरु को दिया। फिर नंद और उद्धव का संवाद हुआ, उद्धव जी को कृष्ण ने ब्रज में भेजा और वहीं पर गोपियों की महिमा देख करके भ्रमर गीत गोपियों ने किया, और नंद बाबा उद्धव जी गोपियों की प्रशंसा करने लगे, वंदे नंद ब्रजेशी नंद प्राग रेणु अभिकृत इत्यादि। इसके बाद में जरासंध जी ने आक्रमण किया, द्वारका का निर्माण हुआ एक रात में, मथुरापुरी से जितने लोग थे सब लोगों को लेकर के द्वारका पहुंच गए। वहां पर कालजवन का वध किया, बलराम का विवाह हुआ रेवती और वाल्मीकि के साथ में। इसके बाद कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह हुआ, फिर प्रद्युम्न का जन्म हुआ, शंबासुर का वध हुआ, और फिर सत्यभामा जामवंती सब पत्नियों के विवाह हुए। इसके बाद में इसी वहाँ ब्राह्मण सुदामा विप्र के ऊपर में कृपा की, 16,108 रानियों के साथ में शादी की। इति श्री श्रीमद्भागवत संक्षेप में श्रीमद् भागवत कृष्ण ने जो जो लीलाएं की उनका वृंदावन की लीलाओं का और मथुरा की लीलाओं का द्वारका की लीलाओं को हमने पढ़ने कल आप सभी लोग टोला में सम्मिलित होने के लिए नगर संकीर्तन में सम्मिलित होने के लिए 5 बजे यहाँ आ जाएंगे और हमारा 5:30 से यहाँ से हम लोग डोला हमारा चलेगा झांकियाँ हाथी पर ऊंट पर नगाड़े बजते हुए घोड़े पर कृष्ण बलदेव और रथ पर राधा कृष्ण का विग्रह और सब जितनी झांकियाँ हैं निकलेंगी और हम लोग 8:30 तक यहाँ करके समाप्त करेंगे और दूसरे दिन उपवास करेंगे व्रत करेंगे सब अष्टमी का और 7 तारीख को अष्टमी सप्तमी अष्टमी का भी वहाँ पर हम लोग ये करेंगे। सारा दिन भागवत चलेगा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करेंगे और शाम को विभिन्न कलाकार लोग आएंगे और उनको सब तुम लोग आदर जत्न के साथ में रखना और नगर संकीर्तन में हमसे तुम लोग मिल जाना रास्ते में कहीं या यहाँ आ जाए या होली गेट में या जहाँ भी हो मिल जाए आप तो यहीं पर आ जाएंगे और तुम वहाँ पर मिल जाएंगे दामोदर का भी कह देना वो मिल जाए तुम्हारो नगर प्रोसेशन विल बी डन आई रिक्वेस्ट ऑफ दोज यू आर हियर दोज यू आर नॉट हियर दोज यू आर इन वृंदावन दे शुड कम बिफोर 5:30 दे शुड कम जस्ट एट 5 वी विल बिगिन और नगर संकीर्तन। यदि कृष्ण का ब्रज में जन्म होता गोकुल में उपपति भाव नहीं होता क्यों नहीं होता क्यों नहीं होता इसलिए नहीं होता वहां पर जो कन्याएं हैं उनकी बहन है और जो जेठ जो उनके जेठ भाई की माताएं हैं वो क्या हैं या उनकी पत्नियां वो तो माँ के समान बराबर हैं तो वहाँ पर उपपति भाव यदि जन्मे हैं तो उपपति भाव कैसे होगा रसाभास हो जाएगा। इसलिए मथुरा का जन्म ऊपर से मान लेने से ये समस्या हल हो जाएगी बतलाया था संक्षेप में बतलाया था इतना नहीं बतलाया इसलिए औपपति भाव की सिद्धि के लिए कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया यही अच्छा प्रतीत होता है तब वहां संभोग में और विप्रलंब दोनों अवस्था में उपपति भाव रहेगा इसलिए कृष्ण जब तक ब्रज में रहे विवाह नहीं हुआ उपनयन नहीं हुआ उसके बाद तो विवाह होगा तो उपनयन के पहले ही चले आए यदि रहते तो उपनयन होता तो नंद बाबा उनकी शादी कर देते कहीं और उपपत्य भाव सब समाप्त हो जाता नहीं होता। इसलिए बड़ी चतुराई से कृष्ण ने जोग माया के द्वारा औपपति भाव का आस्वादन करने के लिए ऐसा देखो ब्रज में यदि शादी हो जाती तो फिर औपपति भाव नहीं रहता किंतु वहां पर देखो संजोग में उपपति भाव पतियों से छिप करके और उनके पति वहां हैं और विप्रलंब में भी जब तक वो द्वारका मथुरा में रहे गोपियों का उनके प्रति विप्रलंब का भाव रहा और कृष्ण का भी उनके प्रति अपने में उपपति का भाव रहा ये बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को जो समझेंगे वो रस का आस्वादन करेंगे। इसलिए आप यू कैन ट्रांसलेट इन इंग्लिश डोंट मेक एनी मिस्टेक। दोनों का बतला है ना कृष्ण का वहाँ रहते हुए विप्रलंब भाव इनका उनका किंतु गोपियों का विप्रलंब भाव अधिक है।
So, in the coming next 2 days, we will celebrate the festival of Sri Janmashtami. So, from the last many days, we are hearing from the mouths of many, many devotees according to their abilities, according to their conception, different understandings of what is Sri Krishna Tattva. So Guru Maharaj said, today is his turn. So on Srimad Bhagavatam, first skanda, first chapter, there the rishis of Namasaranya asked the question to Suta Goswami, hey Bhadra, hey Suta Goswami, so Krishna is the Saswatam. That means he is the protector of the Yadus. He is the son of Vasudev Maharaj.
No, Vasudev.
Vasudev
Maharaj.
Vasudev Maharaj.
What is the difference between Vasudev and Vasudev?
Vasudev is Krishna's father and Vasudev is Krishna.
Nahi.
Krishna.
Acha, bolo. What we talk? Bolo. What?
Vasudev.
Who is it?
Vasudev is Krishna's father. And Vasudev is Krishna. So, please describe his pastimes. So, therefore, Guru Maharaj is giving many different evidences directly from the Srimad Bhagavatam, how the conclusion is given that Krishna is the son of Vasudev Maharaj and Devaki. There it says directly, Krishna went from his father's house. Where is that? In Mathura.
So, wo udhar lal hai, idhar lal hai.
Jahan se hum
baithenge wahan se lal dikhai dega.
Usko bhi lal aisa
roshan wala hai, sfed kar dete hain. Aur isko bhi bhej karke udhar mein.
Wahan se
sabhi lal samne hai. Sab log wahi par baithenge. Samajh rahe hain? अथवा उनका दृष्टिकोण समझ लेना अच्छा हो तो रहने दे.
Giving different evidences directly from the mouth of Srila Vyasadeva in the Srimad Bhagavatam, how Krishna Parabrahma took birth in Mathura, and he took birth directly in the house of Vasudeva Maharaj. Oh Bhadra, oh Srila Goswami, what deals did he perform? Devarupani. Just like the sun appears.
बैठ सकेंगे या चेयर दे दूं? बैठ सकेंगे?
Therefore, Devarupani, just like the sun appears from the ocean in the same way, Parabrahma Sri Krishna appeared from the womb like ocean like womb of Devaki mother. Also, another evidence given when Vasudev Nandan Krishna appeared here in Mathura, that time all the demigods headed by Brahmaji offered many types of prayers. So where did they offer those prayers? Directly here in Mathura. So Sri Vyasadeva Maharaj and Sri Sukadeva Goswami had a special reason for giving all these pramans, how Krishna was born in Mathura. But if you look very carefully under the direction of the Acharyas, also other meanings are given how Krishna took birth
better
in
you
Vrindavan.
Better you speak longer, not so fast. So fast. Like express.
Not like Radha.
Nandastu Atma Yojana. They are given directly praman in a hidden way how Krishna took birth from Yasoda. Also, that time it describes fully the Nandotsav celebration of Nanda Maharaj, how on the birth of his son, Sri Nanda Baba became so happy, he gives so many cows in charity. Also, the gopis have said, Jayantike become Janmana Braja. Krishna has taken birth in Vrindavan. They're given evidence. Brahmaji also said. So, if you look very carefully, that in the Srimad Bhagavatam, both things are described. Both how Krishna took birth, appeared here in Mathura, and how Krishna also took birth in Vrindavan. So, therefore Guru Maharaj is saying, therefore, especially this verse, tatra angsena avitenasya. The two meanings have been given here. One is by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Guru Maharaj says, and the second is given by the inspiration of Sri Sanatana Goswami Pad. So tatra angsena. So that angs of Krishna took birth with Krishna. That angs can mean Baladeva Prabhu, who is the Vaibhava Prakasha of Krishna himself. But also, if you think also in another way, tat angsena, the angsa of Brajendranandan, he took birth where? In Mathura. So, therefore, question may come that why these both things have been described in the Bhagavatam, why everything has been described in a very hidden way. What is the reason? So Krishna is the most beloved of all the jivas, not simply in this world, but also in the spiritual world also. Out of all different types of service to Krishna, upapati bhav, or the relation, unwedded relation with Krishna, is the topmost. So Sri Krishna came here, why? A secondary reason is to establish dharma, yada yada hi dharma sya. But the main reason that Krishna came was to taste this upapati bhav with the gopis. So, it is directly said in the Bhagavatam that Krishna is born in Gokul, then there can be no upapati bhav. Why? Because that means that all the gopis, the young unmarried maidens of Vrindavan, they will become like Krishna's own sisters in Gokul. That means they will be like Krishna's own sisters. Therefore, this will be disturbance, corruption of upapati bhav. Therefore, this upapati bhav is tasted both in meeting and in separation. So therefore, for all these reasons, Krishna left Vrindavan before his upanayan, means his brahman, his diksha. Why? Because immediately after diksha, the marriage must be arranged. So if Krishna is married in Vrindavan, then upapati bhav between Krishna and the gopis will be destroyed. So for this reason, Yoga Maya arranged all these pastimes that Krishna would leave Vrindavan and take his upanayan samskar in Mathura and marry with all the kanyas in, all the queens of Dwarka. So therefore, for this reason, Krishna's birth is not directly described in Vrindavan, and his marriage is also not performed in Vrindavan.
At last, I not understand.
So another point, Buddha told Vishnu Anuja means Jagmaya Devi. She took part in Gokul, not in Mathura. So it seems that Vishnu took part in Gokul. Another point, Buddha told, if you externally admit that Vishnu took part in Mathura, then his paramour mood will be solved very easily. Have to admit that externally he took part in Mathura. I have to mention this point too.
कृष्ण ने जन्मलीला का कुछ भाग मथुरा में संपन्न किया, शंख पद चक्र गदा पद्म धारण करके यहाँ पर उत्पन्न हुए, पूर्ण रूप से उसी समय में गोकुल में जन्मे यशोदा जी के गर्भ से। और जन्मन लीला के बाद ही में नंद बाबा के घर में बधाई बजने लगी, बड़े उत्सव होने लगे, लाखों लाखों गैयाओं को दान किया जाने लग गया और उनका संस्कार, जन्म संस्कार जो होता है वहाँ पर गोकुल में। नंद यहाँ पर कोई जन्म संस्कार नहीं हुआ, नाड़ी छेदन इत्यादि मथुरा में नहीं हुई और वहाँ पर नरलीलावत उनका नाड़ी छेदन इत्यादि सब कार्य ये गोकुल में हुआ। यदि यशोदा के गर्भ से उत्पन्न नहीं होते तो यशोदा जी के साथ वहाँ नाड़ी छेदन का कोई प्रश्न ही नहीं आता, इसलिए नाड़ी छेदन भी वहाँ पर है। तो ये जन्म लीला हुई और कुछ दिनों को बाद ही कंस को शक हुआ कि यही नंद का नंदन ही श्याम सुंदर ही हमारे प्राणों का हंतारक है, किंतु निश्चित नहीं कर सका थी। किंतु ब्रज में जन्मे हुए 10 दिन के अंदर में जितने लड़के थे उन सब का विनाश करने के लिए अपने असुर बंधुओं को परामर्श दिया और सबसे पहले पूतना बालघातिनी रुद्राक्षसी वो ब्रज में आई और पुत्र लालन के बहाने पलने से गोदी में उठा लिया और कृष्ण को अपना 20 का स्तन दिया। कृष्ण ने 20 के साथ ही साथ आंखें बंद करके उसके प्राणों को भी खींच लिया और वो विकराल रूप धारण करके 6 माइल में गिर पड़ी, मथुरा में नहीं आ सकी। इस प्रकार से उसका प्राणांतर और उसके गंध से जब उसको जलाया तो अगरु का गंध निकलने लग गया और कृष्ण ने दयालुता के साथ में उसको धात्री उचित गति दी। धात्री उचित माता का के जैसा जो स्तन पलाती है उसको धात्री कहते हैं, ऐसी गति उन्होंने दी। इसके बाद में कृष्ण ने और भी लीलाएं गोकुल में की। वहीं पर शकटभंजन लीला, तृणावर्त वध, शकट जो खड़ा था बहुत बड़ा भारी गाड़ी 6 पहियों वाला, उसी के अंदर में प्रवेश कर गया और नीचे उसी के पल्ले में कृष्ण झूल रहे थे। इतने जोर से दबाया कि कृष्ण को पिचट देगा, किंतु कृष्ण रोते हुए अपने पैरों को इस प्रकार से जो उछाल रहे थे उसके लगने से ही बस वो गाड़ी उलट गई और वो असुर मर गया। तृणावर्त और तृणावत का वध किया। असुर ने सोचा शरीर धारण करने से तो लक्ष्य वो देख करके मार डालेगा, इसलिए हवा का रूप धारण करके भयंकर आंधी का रूप धारण करके उसे मारेंगे। किंतु वो कृष्ण को लेकर के ऊपर आकाश में उड़ा, कृष्ण ने उसकी ये पकड़ ली और थोड़ा सा बचने के लिए दबाया तो प्राण निकल गया, तो वो क्या करें उसके ऊपर में गिर गए और गोपियां फिर पीछे से पहुंच। इन सब लीलाओं में ऐश्वर्य भी है कि तुम माधुर्य इसलिए कहते हैं अपने छोटे बालक रूप में ही उनका वध किया। विकराल विष्णु जैसा या त्रिविक्रम जैसा विराट रूप धारण नहीं किया, नर लीला के अनुरूप में किया, इसलिए इसको माधुर्य लीला ही कहते हैं। फिर कृष्ण को जम्भाई आई और यशोदा जी ने उसमें विश्व रूप देखा, अपने को भी उसमें बैठा देखा उनके मुख में, सोची जी भूत प्रेत लग गया। ब्राह्मणों को बुलाया, गाय दान की गोबर और मूत्र से उनका अभिषेक कराया। यशोदा जी को अर्जुन की भांति और दूसरों की भांति ऐश्वर्य भाव नहीं आया, भगवत बुद्धि नहीं हुई, ये सब लीलाएं उन्होंने की। क्या भाई, इसके बाद में कृष्ण ने ब्रह्मांड घाट में मट्टी खाई, बलदेव इत्यादि शाखाओं ने उलाना दिया यशोदा मैया को और हाथ से उसका मुख खोल करके देखा तो देखा जो मट्टी तो नहीं देखा किंतु विश्व ब्रह्मांड को सब को उसी के अंदर में देखा। तभी उनको ये नहीं हुआ जे ये भगवान है। यशोदा जी का वात्सल्य इस प्रकार से गोकुल में दामबंधन की लीला हुई। भक्त वात्सल्य की डोरी में बध गए कृपया शीतस्व बंधन। इसके पहले आज तक किसी ने भी कृष्ण को नहीं बांधा। भाई ये चलेगा बहुत गर्मी, तब तक के कीर्तन करो कृष्णदास। ओ यो 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 माइक ही नहीं है तो देता किसलिए।
Candia, Candia, Karuna. Karuna na bale, kangiya kangiya.
Karuna na bale,
kangiya kangiya. Prana kiwa.
जो किसी जन्म में किसी भी लीला में उनको कोई नहीं बांध सका, बल्कि उन्होंने बलि इत्यादि दूसरों को बांधा। इसके बाद में जमलार्जुन का उद्धार हुआ, इसके बाद में छठी करा वृंदावन आए, वहां पर सबसे पहले बत्सासुर का बछड़ा बन करके आया था, उसको वध किया। अघासुर का वध किया, अघासुर ने पाप की प्रतिमूर्ति उसका वध किया। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने बच्चों को और बालकों को दोनों को चुरा लिया, और इसके बाद में जब उनका वो छोट गया मोह लीला जब देखी तो बड़े विस्मित हुए और स्तुति करने लगे। भागवत में स्तुति बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया। इसके बाद में धेनुकासुर को वध किया। धेनुका माने मूर्खता, जो भगवान का भजन नहीं करते, अपने भोग विलास में मत रहते हैं, ऐसे लोगों को गधा कहा, बुद्धिहीन, उसको बलदेव जी ने वध किया। कालिय दमन, वृंदावन में कालिय रथ को वो विशाला कर रहा था, उसके मारे सभी लोग मर रहे थे, कृष्ण ने उसका दमन किया और उसको रमणी तीर्थ भेजा। दामन नल का पान किया उसी रात में, फिर मुंजाटवी में दामानल का पान किया। वेणु गीत हुई, चीरहरण लीला हुई। भगवान ने चीरहरण की लीला क्यों की? बहुत बहुत से आजकल के आधुनिक विद्वानों को ये समझ में नहीं आता, जो अंतर और बाहर है उनके लिए छिपा क्या है। द्रौपदी के वसन बन करके लिपट गए तो उसमें कोई हानि नहीं हुई, और चीरहरण हुआ तो इसमें दोष देखते हैं। जब ये पत्नियों के ऊपर में अनुग्रह किया, इंद्र का मान वर्धन किया, और फिर उन लोगों ने मिल करके गोविंद का अभिषेक किया, गोविंद नाम से नंद का वरुण लोक के दूतों ने अपहरण कर लिया। वे रात में ही स्नान कर रहे थे यमुना में, और फिर वहाँ पर देखा जब वरुण लोक में गए तो कृष्ण का सभी लोग पूजा और अभिषेक कर रहे हैं। नंद बाबा देखा जी हमारे बेटे को इतना आदर कर रहे हैं ये लोग। तब फिर वहाँ से आए तो कुछ दिनों के लिए उनको ये हुआ कि हमारा बेटा, जम लोग वहाँ पर गए और उसको देवता लोग इतना आदर कर रहे हैं। इसके बाद में राष्ट्रपंचाध्याय रास हुआ, अजगर के मुख से नंद बाबा का छुटकारा दिया, ये मथुरा में ही। अजगर उनके पैर को पकड़ लिया और निगलने लगा, और सभी लोग कृष्ण को पुकारने लगे, तो कृष्ण ने उसको पैरों से छू दिया और वो देवता बनकर विद्याधर देवता बन गया और कृष्ण की स्तुति करके चला गया। इतना देखने पर भी कृष्ण का स्तर कि उनको कोई ब्रजवासी भगवान नहीं मानता। इसके बाद में शंखचूड़ का वध किया कृष्ण ने, फिर जुगल गीत हुई, अरिष्टासुर का वध हुआ, केशी वध, व्योमासुर वध, अक्रूर का फिर नंदगांव में आना और कृष्ण को ले जाना, और वहाँ पर ले गए। पहले रास्ते में वो जो कपड़ा रंजक होता है वो भी उसका वध किया, वो कंस को देगा, कृष्ण को नहीं देगा, वध किया। इसके बाद मालाकार ने माला दिया तो उसके ऊपर मैं दया किया, कुब्जा के ऊपर मैं अनुग्रह किया, उसके अंग को परम सुंदरी बना करके और उसकी इच्छा को पूर्ण किया। इसके बाद में यही कंस टिल्ले में धनुष को भंग तोड़ दिया और कुबल्यापीड़ हाथी को सबके सामने मारा और उसके दांतों को लेकर के अखाड़ा में पहुँचे। यहीं पर चारुण को मुष्टि को मारा। इसके बाद में कंस के मंच पर कूद करके पकड़ करके उसका केस और नीचे गिरा दे, तुम मेरी मैया का केस पकड़ करके मारेगा। बस उसके ऊपर में गिरे और वो ऐसे ही मर गया, अपने राज्य नहीं लिया, उग्रसेन को ही, कंस के पिता को ही राज्य दे दिया, राज्याभिषेक कर दिया। और विद्या अध्ययन के लिए कहाँ चले गए? उज्जैन चले गए। उज्जैन क्यों गए? ऐसा कोई पंडित नहीं था, और वैष्णव पंडित होगा तो उनको जान जाएगा। इसके बाद गुरु दक्षिणा में उसके जो पुत्र की मृत्यु हो गई थी उसको ले आए जमपुरी से और गुरु को दिया। फिर नंद और उद्धव का संवाद हुआ, उद्धव जी को कृष्ण ने ब्रज में भेजा और वहीं पर गोपियों की महिमा देख करके भ्रमर गीत गोपियों ने किया और नंद बाबा उद्धव जी गोपियों की प्रशंसा करने लगे, वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम प्राग रेणु अभिक्षण सहित। इसके बाद में जरासंध जी ने आक्रमण किया, द्वारका का निर्माण हुआ एक रात में, मथुरापुरी से जितने लोग थे सब लोगों को लेकर के द्वारका पहुँच गए। वहाँ पर कालजवन का वध किया, बलराम का विवाह हुआ रेवती और बाल्मी के साथ में। इसके बाद कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह हुआ, फिर प्रद्युम्न का जन्म हुआ, संभासुर का वध हुआ और फिर सत्यभामा जामवंती सब पत्नियों के विवाह हुए। इसके बाद में इति वहाँ ब्राह्मण सुदामा विप्र के ऊपर में कृपा की, 16108 रानियों के साथ में शादी की। इति श्री श्रीमद्भागवत। संक्षेप में श्रीमद्भागवत कृष्ण ने जो जो लीलाएं की, उनका वृंदावन की लीलाओं का और मथुरा की लीलाओं का, द्वारका की लीलाओं को हमने पढ़ लिया। कल आप सभी लोग टोला में सम्मिलित होने के लिए, नगर संकीर्तन में सम्मिलित होने के लिए 5 बजे यहाँ आ जाएंगे और हमारा 5:30 से यहाँ से हम लोग टोला हमारा चलेगा। झांकियाँ हाथी पर, ऊँट पर नगाड़े बजते हुए, घोड़े पर कृष्ण बलदेव और रथ पर राधा कृष्ण का विग्रह और सब जितनी झांकियाँ हैं निकलेंगी और हम लोग 8:30 तक यहाँ करके समाप्त करेंगे और दूसरे दिन उपवास करेंगे, व्रत करेंगे सब अष्टमी का। और कौन तारीख को? 7 तारीख को अष्टमी का भी वहाँ पर हम लोग ये करेंगे। सारा दिन भागवत चलेगा, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करेंगे और शाम को विभिन्न कलाकार लोग आएंगे और उनको सब तुम लोग आदर जत्न के साथ में रखना और नगर संकीर्तन में हमसे तुम लोग मिल जाना, रास्ते में कहीं या यहाँ आ जाए या होली गेट में या जहाँ भी हो मिल जाना। आप तो यहीं पर आ जाएंगे और तुम वहाँ पर मिल जाएंगे, दामोदर का भी कह देना वो मिल जाएंगे। टुमारो नगर प्रोसेशन विल बी डन, आई रिक्वेस्ट ऑल दोज यू आर हियर, दोज यू आर नॉट हियर, दोज यू आर इन वृंदावन, दे शुड कम बिफोर 4:30 दे शुड कम। Just at 5 we will begin our Nagar Sankirtan.